ये आकाशवाणी है। अब आप जया भारती से समाचार सुनिए। भारत ने लद्दाख में दो नई काउंटी स्थापित करने की चीन की घोषणा का विरोध किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वह चीन के हुतान विभाग में दो नए काउंटी की स्थापना से संबंधित घोषणा सुन चुका है। एक प्रश्न के उत्तर में आज मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इन तथाकथित प्रांतों के अधिकार क्षेत्र का कुछ हिस्सा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में पड़ता है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने इस क्षेत्र के भारतीय अंचल में अवैध चीनी अधिकार को कभी भी स्वीकृति नहीं दी है। वहीं चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र की यारलुंग तंगस्पो नदी पर बन रही पनबिजली परियोजना से संबंधित एक प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री रणधीर जायसवाल ने कहा कि नदी के जल को इस्तेमाल करने के अधिकार के साथ निचले तटवर्ती देश के रूप में भारत ने अपनी चिंताओं को दोहराया है। अमेरिका के साथ संबंधों पर श्री जायसवाल ने कहा कि कुशल पेशेवरों की तकनीकी दक्षता से भारत और अमेरिका के आर्थिक संबंधों को बहुत फायदा होगा। यमन में मौत की सजा का सामना कर रही केरल की नर्स निमिषा प्रिया से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में श्री जायसवाल ने कहा कि भारत निमिषा प्रिया की सजा से संबंधित घटनाक्रमों पर बारीकी से नजर रखे हुए है। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले में हर संभव सहायता कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार की आलोचना करते हुए कहा है कि आप सरकार ने 10 वर्ष के शासन के दौरान दिल्ली को आपदा की ओर धकेल दिया है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में 4,500 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के दौरान यह बात कही। श्री मोदी ने कहा कि सरकार जनता को पानी और सीवर सुविधाएं उपलब्ध कराने में विफल रही। श्री मोदी ने राष्ट्रीय राजधानी के अशोक विहार में झुग्गी बस्तियों के निवासियों के लिए लगभग 1,700 नवनिर्मित फ्लैटों का उद्घाटन किया और पात्र लाभार्थियों को चाबियां सौंपी। इस अवसर पर लाभार्थी शीला ने प्रधानमंत्री की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने दो शहरी पुनर्विकास परियोजनाओं नौरोजी नगर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और सरोजनी नगर में जनरल पूल आवास टाइप 2 क्वार्टर का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने द्वारका में लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के एकीकृत कार्यालय परिसर का भी उद्घाटन किया। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में 600 करोड़ रुपए से अधिक की 3 नई परियोजनाओं की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री श्री मोदी कल नई दिल्ली में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन करेंगे। इस महोत्सव का लक्ष्य ग्रामीण बुनियादी ढांचे का विकास करना, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्थाओं का निर्माण करना और ग्रामीण समुदायों के बीच नवाचार को बढ़ावा देना है। इस 6 दिवसीय महोत्सव का विषय है वर्ष 2047 तक विकसित भारत। कार्यक्रम का उद्देश्य पूर्वोत्तर भारत पर विशेष ध्यान देते हुए ग्रामीण जनसंख्या के बीच आर्थिक स्थिरता और वित्तीय सुरक्षा को बढ़ावा देना है। महोत्सव के दौरान उद्यमिता के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने आज अंडमान निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप में पवन चक्कियों तथा सौर पैनलों के जरिए 100% नवीकरणीय ऊर्जा उत्पत्ति के लक्ष्य को हासिल करने पर बल दिया। नई दिल्ली में द्वीप विकास एजेंसी की 7वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने इन क्षेत्रों में चल रहे विकास पहलों की प्रगति की समीक्षा की। सरकार ने आज कहा कि चीन में ह्यूमन मेटान्यूमा वायरस HMPV के फैलने की खबरों से देश में चिंता की कोई बात नहीं है। संवाददाताओं से बातचीत में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक अतुल गोयल ने कहा कि यह अन्य किसी श्वसन संबंधी वायरस की तरह है। इस वायरस से वयस्कों और बच्चों में फ्लू जैसे लक्षण दिखते हैं। श्री गोयल ने कहा कि किसी प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए देश पूरी तरह तैयार है। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में अगले 2 दिनों के दौरान अत्यधिक वर्षा और बर्फबारी का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश में भी 5 और 6 जनवरी को तेज वर्षा होने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तराखंड में रविवार को गरज के साथ हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। पहले खो खो विश्व कप के लिए आज ट्रॉफी और शुभंकर का अनावरण किया गया। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में 13 से 19 जनवरी तक होने वाली प्रतियोगिता में 21 पुरुष और 20 महिला टीमें हिस्सा लेंगी। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सुधांशु मित्तल ने कहा कि यह प्रतियोगिता स्वदेशी खेल के लिए एक बड़ा बढ़ावा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।